प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 3, प्रवचन सुधा लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहाणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोए सर्वसाहूलं। सुर सुर नरपति वंदने प्रविनष्ट गाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदो वही हूँ मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सिद्धनेय नमस्करण करिये रीते गणधरणे अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पाणिने प्राप्ति करूं साम्य निजे नाथि शिव।
दक्षमेन ये पेज नंबर 3 पर है गुजराती में, यानी आपके साथ साथ अन्य जो कोई सुनते हैं जिनको मालूम नहीं उनको पता लगे कि भाई ये पेज नंबर 3।
आचार्य कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है और उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका वृत्ति नाम की टीका लिखी हुई है। उसी प्रकार जैसे नाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति टीका की भी बात हम इसमें देख रहे हैं। अब इन मूल ग्रंथ और उसकी टीकाएं, इन पर जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं पुस्तकें। उसमें से पहला भाग हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पहली पुस्तक 11 भाग है टोटल। तो पहले भाग के पृष्ठ संख्या 9 पर हम आ गए, 9। यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ेंगे। अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्ते छे, ज्ञान स्वरूप द्रव्य छे, ते द्रव्य थी अभेद छे, अने ज्ञान गुण छे ते भेद छे, एनु नाम अनेकांत छे। यानी वो भेदा भेदात्मक है ना, भेद की सपेक्षा से अभेद की सपेक्षा से उसकी बात है। द्रव्य कहने से उसमें सब आ गए तो कहते वो उसको अभेद कहेंगे, और उसके एक एक गुण का अगर हम भेद करेंगे तो भेद हो जाएगा, ये अनेकांत है। ज्ञान ते द्रव्य छे ते अभेद छे, अने ज्ञान ते गुण छे ते भेद छे, आ अनेकांत छे। પણ અનેકાંત એવું નથી કે વ્યવહારથી પણ થાય અને નિશ્ચયથી પણ થાય, એમ અનેકાંત નથી। અને થોડે આપ ભી સચ્ચે થોડે હમ ભી સચ્ચે એસા વો ઇસકો એસી પ્રરૂપના ચલતી હૈ, હા જિસકા અભ્યાસ નહીં કુછ ભી બતા દેતે એસે અપને મન સે। નિશ્ચયથી થાય અને વ્યવહારથી ન થાય એ જ અનેકાંત છે, આવું જીણું છે। એ અહીં કહે છે કે એવું અનેકાંતમય મહ, નવ નંબર પેજ નીચે સેવો દૂસરા પેરેગ્રાફ. ચૈતન્ય તેજ એ દ્રવ્ય છે અને ચૈતન્ય તેજ તે ગુણ છે. જૈસે જ્ઞાન વ આત્મા ઓર જ્ઞાન વ ગુણ દોનો પ્રકાર સે બતાયે તો ઉસકો અનેકાંત કહા થા. આનું નામ અનેકાંત છે બાપુ. મિલા ના? હા, આ તો વિતરાગની વાણી છે ભાઈ, એ કઈ કથા વાર્તા નથી. કહે છે કે એવું અનેકાંતમય તેજ સદા જયવંત વર્તે છે. સર્વજ્ઞ તે આત્મા ને સર્વજ્ઞ તે ગુણ એવું અનેકાંતમય તેજ જયવંત વર્તે છે, જગતમાં જયવંત વર્તે છે. અર્થાત જગત તેના અનેકાંતમય જ્ઞાન ગુણથી, પૂર્ણ ગુણથી કોઈ દી રહિત નથી. જગતમાં એવા જયવંત જ્ઞાન વર્તે છે. હવે શ્લોક દ્વારા શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ અનેકાંતમય જિન પ્રવચનના સારભૂત, આ પ્રવચન સાર છે ખરું ને, પ્રવચન ને પ્રકૃષ્ટ જીસકો કહેંગે ઉત્કૃષ્ટ વચન, દિવ્ય ધ્વનિનો સાર એમ. એ જો હિન્દી મેં જો ટીકા હુઈ ઉસકા નામ હી દિવ્ય ધ્વનિ સાર રખાયો. ઉન્હોને જિન વચન પ્રવચન એટલે દિવ્ય ધ્વનિ અને તેના સારભૂત આ પ્રવચન સાર શાસ્ત્રની ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. હા હા, તીન નંબર કા હમને પઢા થા, ફિર દોબારા યહાં પઢતે હૈ. પરમાનંદ સુધારસ પિપાસિતાનામ હિતાય ભવ્યાનામ ક્રિયતે પ્રકટિત તત્વા પ્રવચન સારસ્ય વૃત્તિરિયમ. શ્રી જયસેનાચાર્યની ટીકામાં મધ્યમ રૂચિવાળો એમ લીધું હતું. વાતા ને સંક્ષેપ રૂચિવાલે, વિસ્તાર રૂચિવાલે, મધ્યમ રૂચિવાલે, એસે શિષ્યો કે લીએ એસા કહા થા. જો સંસ્કૃતમાં પહેલો શબ્દ છે પ્રવચન સાર વ્યાખ્યાયામ, મધ્યમ રૂચિ શિષ્ય પ્રતિબોધનાર્થાયામ છે. વો હમને જયસેનાચાર્ય કી સંસ્કૃત ટીકા પડી થી. દેખીએ જબ અભી હમ હર ગાથા કે પહેલે ગાથા પડેંગે, ફિર અમૃતચંદ્રાચાર્ય કી જો ટીકા હૈ વો ગુજરાત ઉસકા હિન્દી અનુવાદ પડેંગે, ગુજરાતી અનુવાદ યહાં ગુજરાતી પઢ રહે, ઓર ફિર જયસેનાચાર્ય કી ટીકા મૂળ સંસ્કૃત મેં સે પઢકર ઉસકા અર્થ કરેંગે. વો અભી હમને કર દિયા, યાને હરેક પેજ પર જો જબ ફિર દુબારા આયેગી હો તો હમ કહેંગે જહાં જહાં આતે હૈ. બીચ મેં સ્મોલ ટાઈપ મેં જો સંસ્કૃત મેં લિખા હૈ સેન્ટર મેં, વો જયસેનાચાર્ય કી ટીકા ચલેગી, જહાં જહાં હૈ વહાં વહાં ઉસકો લે લેગી. અભી તો કન્ટિન્યુઅસ હમ પ્રવચન પઢ રહે, તો પ્રવચન મેં સ્વામીજી જીસકા જો રેફરન્સ હૈ ઉસકો બતાકર ફિર આગે બઢ રહે. એ હમને એ સબ ટીકા પઢી હતી. જેને રૂચિ છે તે વો અભી 10 નંબર કે પૃષ્ઠ પર આના શિષ્ય, પણ તદ્દન એકલો જિજ્ઞાસુ છે એમ નહીં. અહીં કહે છે કે પરમાનંદ રૂપી સુધારસના પીપાસુ, એને ખાલી જિજ્ઞાસુ એસા કહીકર છોડ નહીં દિયા, ઉસકા પીપાસુને તીવ્ર અભિલાષા હૈ ઉસકી. કિસકી? પરમાનંદ રૂપ સુધારસ અમૃત અતિન્દ્રિય આનંદ કા જો વેદન હૈ ઉસકી ઈચ્છા વાલે, અર્થાત જેને પરમાનંદ રૂપી અમૃતરસ પીવાની અનુભવવાની પીપાસા છે, અને આત્મા કે અનુભવ કી જીસકો તીવ્ર ઝંકના હૈ. કોઈ રાગ કરવાની કે પુણ્ય કરવાની પીપાસા છે એમ ન લીધું. ભગવાન દેવગુરુ ભક્તિ કરવાનું પીપાસું છે એમ પણ ન લીધું. કારણ કે દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ છે એ તો રાગ છે, આવી આખરી વાત છે. પ્રભુ શું થાય, પોતે વસ્તુ જે છે વાત હૈ ને, કોઈ તીવ્ર રૂચિ અંદર સે તીવ્ર ઈચ્છા હો જાતી ને અમને કોઈ ઇચ્છ કરના હી હૈ. જૈસે વો 1975 મેં યાત્રા નીકળી હતી ને બાબુભાઈ મહેતા નીકાલી હતી, તો અંદર એસા થઈને ને હમકો જાના હી હૈ, કિતને ભી જો ઓબ્સ્ટેકલ્સ આયે જો કુછ નહીં અપને કો જાના હી. ઇસ તરહ સે તીવ્ર રૂચિ કિસકી? વો રાગ કી તીવ્ર રૂચિ થી. પણ ઉસકે બાદ જબ પ્રવચન સુને વો સહી ખ્યાલ આયા કે આ માર્ગ હૈ. હા,
અભી હમ દેખતે હૈ આમ તૌર સે પતિ ચાહતા હૈ કે કશ્મીર ઘૂમને જાય, पत्नी कही थी नहीं नहीं स्विट्जरलैंड जाएंगे, बच्चा कहता है कोरिया जाएंगे, कोशिया क्या मालूम नहीं,
क्रियोशिया,
ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट हो गए, अलग अलग होता है। जैसे रथ के दो पहिए हो, एक ही दिशा में जावे तो रथ चलेगा, वैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी आपने क्या देखा कि दोनों की रुचि एक जैसी हुई, ऐसी आई ना बात, कहाँ पर आई थी अभी,
वो तो राग की थी, परंतु यहाँ तो कहते कि हाँ। परमानंद की तीव्र, वहाँ तो परमानंद का पता ही नहीं
था, कुछ अन्य बताने हाँ। वाला था, बलते में चला गया। 1975 के शुरू शुरू में इनकी इच्छा थी कि हम
यात्रा में जाएंगे
और मेरी इच्छा थी कि हम अमेरिका जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन 70 साल में शादी करके गई थी, वो बहुत पीछे लगी थी कि तू आके तो जा, मैं तेरा टिकट भेजती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, तू आ तो सही, लेकिन इसको कहना था कि नहीं हम यात्रा में जाएंगे, और उसके इच्छा के अनुसार हम भी परिणित हुए,
अपने से हुए, दूसरे की इच्छा से नहीं हुए।
और यात्रा में थे, वो शिकार पॉइंट,
ये जरा वायर अंदर से लूज हो रही है।
यानी उस 1975 से हम पूरे, हमारी दिशा ही बदल गई, अभी सिर्फ दशा बदलने की बाकी है, देखते
हैं। कहते ना कि राग करवाने की पुण्य करवाने की पिपासा छे हम ना ली दू, ऐसा होता है कि नहीं, हमको ये यात्रा करनी है, हमको ये करना है, ये तो राग की रुचि थी, वहां जाने के बाद वो समझ में आए कि वस्तु स्थिति क्या होती है, सच्चा धर्म किसको कहेंगे, नहीं तो वो धर्म क्या है? ऐसे तो जिसको कहेंगे ना, जिसको प्रवृत्ति में जो होता है क्रियाकांड, जिसको कहो, जो व्रत उपवास कहो, विकासन कहो, या पूजाएं, विधान, मुनियों का आना जाना, उनके प्रवचन सुनना, ये सब चलता था, और ये प्रथमानियों के सारे ग्रंथ पढ़ के हमारे घर में बहुत बड़ा शास्त्र भंडार था। पढ़ने की रुचि तो बचपन से थी, पढ़ा भी था, पर इस तरह से नहीं पढ़ा था, नित्य पोते वस्तु जीवी, अभी ये कौन सा जीव लिया, परमानंद रूपी सुधारसना पिपासु लिया, खाली जिज्ञासु नहीं, बस वो अति इंद्रिय आनंद के अनुभव की जिसको तीव्र अंदर रुचि पड़ी है। अही कहे छे के परमानंद रूपी सुधारसना पिपासु, परम अति इंद्रिय आनंद रूपी अमृत रसनी जेने पिपासा छे, एवा भव्य जीवोना हितने माटे, पुण्यना अर्थी ने स्वर्गना अर्थी ने रागना अर्थी माटे आ प्रवचन सार नथी, पण जेने परमानंदमय प्रभु आत्माना अमृतना रसने पीवानी तृषा लागी छे, पिपासा छे, तेना माटे छे। पिपासु कहो ने, हा, अर्थात परमानंद रूपी सुधारसनी जेने तृषा छे, पिपासा छे, एवा भव्य जीवोना हितने माटे, तत्वने एटले वस्तु स्वरूपने जे प्रकट करे छे, भव्य जीवोना हितने माटे आ टीका छे। टीका केवी छे के जे तत्वने प्रकट करे छे, तत्व एने वस्तु स्वरूपने जे प्रकट करे छे, एवी आ प्रवचन सारनी टीका छे, आ टीकानी व्याख्या छे। वस्तु स्वरूपने जे प्रकट करे छे एवी आ टीका छे, अने ते टीका आनंदना अभिलाषी पिपासु भव्य जीवने माटे अर्थात तेना हितने माटे छे। जे टीका तत्वने प्रकट करे छे, तत्व का अर्थ क्या देखा भी हमना, हमने वस्तु स्वरूप, एटले के वस्तुना स्वरूपने प्रकट करे छे। हाँ हाँ, प्र अधिक वचन अधिक सार, प्र नाम दिव्य वचनों, जे दिव्य ध्वनि, त्रण लोकना नाथ परमात्मानी दिव्य ध्वनि, जे ओम ध्वनि छे, ते मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। बनारसीदास ने ऐसा लिखा है, एवी जे वाणी छे ते अहिया प्रकट करे छे, कोना माटे के भव्य जीव माटे। देखो ये सहज कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये मुनिराजों ने तो ये प्रकट किया है। अपना अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव बारंबार कर रहे, हर अंतर्मूर्त में चल रहा है, छठा सातवा गुणस्थान है, परंतु अभी छठे में आते तो ऐसा सहज विकल्प आता है कि भव्य जीवों को ये बात बताऊं, जो हमने पाया है वो सब जीव पाए, ऐसी सहज उनकी भावना हो जाती है। समय सारमा एम आवे छे ने कि आओ जिज्ञासु जीव छे ते प्रश्न करे छे तेने उत्तर देवाय छे, एमने एम सांभळवा आव्यो छे एम नहीं, जेने आवी पिपासा थई छे के प्रभु आ आत्मा आश्रव थी केम निवृत्ते, ये आश्रव चाहिए ना, आश्रव नहीं आश्रव, श्रव, इन्हें 73 नंबर की गाथा में बात आई थी। आपने सवार मां समयसार मां चालू के ज्ञानी ना लक्षण शू गाथा 75 एवं पूछो तू, एवं पूछना जिज्ञासा छे तेने आ कहवाय छे, समझाय छे काय, आवाने उत्तर देवाय छे, एवी श्री अमृतचंद्राचार्य शैली लीधी छे। लोको पुण्य फला अरहंता कहे छे ने, पण एनो अर्थ छे के अरिहंत ने पुण्य अकिंचित कर छे, हवे एनो अर्थ ए करे छे के पुण्य ना फल रूपे अरिहंत पद पामशे। अरिहंत पद ये पुण्य का फल नहीं है, ख्याल में है ना, पुण्य के कारण अरिहंत नहीं बने हैं, उनके पुण्य का उदय चल रहा है, वो बात अलग है। पुण्य को पाप को सबको छोड़कर अंतरंग में स्थिर हुए हैं, तब उनको अरिहंत दशा प्राप्त हुई। अरे भाई, अभी अगर वो पुण्य को अच्छा मानते हो, अरे पुण्य को अच्छा मानने वाला तो समय को भी नहीं प्राप्त करेगा, अरिहंत की बात छोड़ो। पहले में पहले जब श्रद्धा उसके जो मान्यता सही हो जाए, अभिप्राय सही हो जावे, तभी तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये आने वाला है अभी पुण्य फला अरिहंत। तने अर्थ नहीं खबर नहीं बापू, हाँ हाँ अर्थ तो ऊपर लख्यो छे, श्री अमृतचंद्राचार्य तो तेनी ऊपर एम कहे छे के पुण्य फल तीर्थंकर ने अकिंचित कर छे। अकिंचित कर करते वो कुछ नहीं करता उनके, तेना आत्मा ने काई करनारू नथी, ए तो अतिशय ने वाणी आदि बधु छे ते पुण्य नु फल छे। क्या कहा, पुण्य के उदय में क्या हो रहा है, तीर्थंकर प्रकृति इटसेल्फ पुण्य प्रकृति है, उसका उदय हो रहा है, बस इतना ही। सम्मसरण की रचना है, वाणी है, बाकी अतिशय होते हैं प्रकट, वो सब पुण्य के फल वहां है, बस तीर्थंकर की अपेक्षा, पर उसके उसमें उनके तो कुछ लेना देना नहीं, उसके कारण वो कुछ सुख है नहीं, वो तो अतीन्द्रिय सुख अनंत सुख के धनी है स्वयं। सामान्य अरिहंत और उनमें तो कुछ ऐसे तो कोई फर्क नहीं है, तीर्थंकरों के विशिष्ट पुण्य का उदय पाया जाता है, इतना ही है। पर पुण्य के कारण वो तीर्थंकर हुए या पुण्य के कारण वो अरिहंत हुए ऐसा नहीं है, ये कह रहे। मुमुक्षु, पुण्य नु फल अरिहंत दशा नहीं, ये जानबूझकर फिर दोबारा पूछ रहे।
यानी लोगों की ऐसी मान्यता है पुण्य करने से ही धर्म होता है, इसलिए वो ऐसा उल्टा अर्थ करते हैं कि अरिहंत ये पुण्य का फल है, लेकिन उसके लिए दलील ये दी है कि पुण्य अकिंचित कर है, यानी हेल्पफुल नहीं है, ऐसी इनकी मान्यता है, वो तो बंद का कारण है, अबंध दशा कैसे प्राप्त कराएंगे। ये बात और एम्फसाइज करने के लिए बीच में, यानी हम तो कहेंगे राम जी भाई उनकी ताकत थी कि ऐसे प्रश्न पूछे, तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा बोलो।
पुण्य नु फल अरिहंत दशा नहीं, ये ऐसा ही लगता है जीवों को है? नहीं, घना एवो अर्थ करे छे, पुण्य ना फल रूपे अरिहंतपणु प्राप्त थाय। अरे प्रभु, एम नथी, पुण्य नु फल तो तेमनो अतिशय छे, है ने, समोसरण मळे, वाणी निकले, ते पुण्यनु फल छे। तीर्थंकरना आत्माने पुण्य फल किंचित कर छे, काई करतु नथी। ये वाणी है, समोसरण, ये तो बाह्य है, बाह्य चीजें है सब, उनके आत्मा से कोई संबंध नहीं उसका। आवु मथाळू बांधीने पछी तो प्रवचन सार गाथा 45 करी छे, समझाणू काई, वो आने वाली है, जब 45 गाथा आएगी तब उसकी चर्चा होगी विस्तार से। अने त्यां प्रवचन सार 77मी गाथा में कहूं छे के जे कोई पुण्य नाम शुभ भाव अने पाप नाम अशुभ भाव बेमा काई फेर माने એટલે કે શુભભાવ ઠીક છે અને અશુભભાવ અઠીક છે તે મોહ એટલે મિથ્યાત્વથી ઢંકાયેલો ઘોર સંસારમાં રખડવાનો છે. ક્યાં કહેતે જો પુણ્ય ઓર પાપ મેં કોઈ ભેદ નહીં કરતા હૈ હા જ્ઞાની જો ભેદ કરતા હૈ તો ઘોર સંસાર મેં ઘૂમતા રહેતા હૈ. ભેદ ક્યાં કરતા હૈ પુણ્ય અચ્છા ઓર પાપ બુરા યાની ઉસમે સે એક કો હેય કે બદલે ઉસકો ઉપાદેય માના. દોનો હી હેય હૈ દોનો હી આશ્રવ હૈ. આશ્રવ મેં ઉન્હોને દો એક પુણ્ય આશ્રવ એક પાપ આશ્રવ તો પુણ્ય આશ્રવ તો અચ્છા કરને લાયક યાની માન્યતા કી ભૂલ હો ગઈ.
યહાં પર કિસીને પ્રશ્ન ભી પૂછા થા હમ ઇધર આયે હૈ પહેલે કમ સે કમ દો દિન મેં દો બાર સમય તીન બાર સમય કરતે થે પ્રતિક્રમણ કરતે થે ઉપવાસ કરતે થે વો તો કમ સે કમ પુણ્ય સે હમે કુછ ફાયદા તો હોતા થા. યહાં તો એસી કોઈ બાત હી નહીં હૈ તો વો ભી ગયે ઓર યે ભી ગયે હાથ મેં ક્યા રહા હમારે. તો યાની અભી ભી વહાં પુણ્ય કી મહત્તા અભી બાકી હૈ. યહાં તો કહે થે કે પુણ્ય કુછ નહીં કરતા હૈ તેરે કો સંસાર મેં રખડાતા હૈ. યે બાત આસ્તે આસ્તે સેચ્યુરેટ હોતી હૈ. પહેલે પહેલે તો દિમાગ ઉડ જાતા હૈ. મનીષા બેન ને તો એસે સામને સે બતાયા તો અમારા હાથમાં શું થયું રહ્યું ક્યાં બતાયા. હા
દેખ એને ભી કુછ બીચ મેં નમૂના બતા રહે કુછ બાતે તો યે સબ આને વાલી હૈ વિસ્તાર સે. દેખ છે ને આમાં જો નહીં મન નહીં જો એવમ નથી વિશેષો. 77 ગાથા છે. શુભભાવ અને અશુભભાવમાં કાંઈ ફેર નથી બંને બંધનના કારણ છે. ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય એમ કહે છે કે અમારી ભક્તિ કરનારને શુભભાવ થાય અને બીજાને અશુભભાવ થાય તે બેમાં જે ફેર માનશે કે શુભ તે ઠીક છે તે સંસારમાં રખડવાનો છે. નહીં મન નહીં જો એવમ નથી વિશેષો યાની જે ઉસમે વિશેષ નહીં એસા જો નહીં માનતા. પુણ્ય પાપ એ બેમાં વિશેષ કાંઈ નથી કાંઈ ફેર નથી છતાં જે એમ નથી માનતા અને વિશેષ એટલે ફેર છે એમ માને છે તે હિંડદી ઘોરમ અપારમ સંસારમ એમ શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે. અને ઘોર અપાર સંસાર મેં ભટકતે રહેતે વો હિંડ હિંડના યે શબ્દ વાક્ય જો વાક પ્રચાર યા વર્બ જીસકો કહેંગે ક્રિયાપદ મરાઠી મેં હૈ હિંડ ને હિંડ ને ભટક ગુજરાતી મેં
ક્યાં
વો તો હેડો હેડો એ વો અલગ હૈ. બહુત હમને યાત્રા મેં બહુ સુના હેડો ને ચાલો ચાલો હેડો હેડો વહાં કા ખાસ શબ્દ થા હેડો. અચ્છા વો સારા ઉધર કે થે ના વો લોગ હા વહી તો મેં બોલો ને હમને યાત્રા મેં થે તભી પહેલી વાર સુના હેડો 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 કરતે થે સબ. કહે છે કે 11 પેજ નયા પેરેગ્રાફ અમારી ભક્તિ કરે તેને શુભભાવ થશે અને સંસારના પાપ કરશે તેમાં અશુભભાવ થશે. હવે બેમાં કંઈક ફેર માને કે આ શુભ તે ઠીક છે અને અશુભ તે અઠીક છે પણ એ બેમાં વિશેષ કાંઈ નથી બંને એક સરખા બંધના કારણ છે એમ ન માને તો ઉપર ક્યાં બતાયા કે દોનો મેં ફરક નહીં હૈ એસા જો નહીં માનતા. દો નિગેટિવ બતાયે થે તો હિંડતી ઘોરમ અપારમ સંસારમ. આ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય તેની ટીકા કરી છે. મોહ સંછણનો મિથ્યાત્વથી ઢંકાયેલો પ્રાણી શુભ ઠીક અને અશુભ અઠીક એમ માને છે. અર્થાત શુભ કરતા કરતા કલ્યાણ થાય છે અને અશુભ કરતા કલ્યાણ ન થાય એવો જે ફેર માને છે તે મિથ્યા દૃષ્ટિ ઘોર સંસારમાં રખડવાનો છે. આ વિતરાગ વાણી તે અહીંયા કહે છે. તેના હિતને માટે परमानंद प्राप्त थाय ते माटे आ कहवाय छे, पण तेने पुण्य प्राप्त थाय ते माटे कहवाती नथी। समझाणू कई? देखो पहले मान्यता की बात पहले उठाइए। पुण्य करना या पाप करने की बात यहाँ नहीं है। वृत्ति तो जो जिस भूमिका में जहाँ जो है वो तो वृत्ति उठती है, हमारे करने से नहीं होते। ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो वाली तो राग का कर्ता होकर बता रहे। यहाँ जो राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ कभी अशुभ होते हैं, तो शुभ है तो हाँ अच्छा और पाप है तो बुरा, ऐसा जो मानता है तेने दोनों में फर्क किया। दोनों ही बंध के कारण है। मान्यता में क्या लेना थे? दोनों ही छोड़ने लायक है। छूटेगा पुण्य जब अभी मुनिराजों को भी नहीं छूटा है, पर माना कब? अरे जब माना मिथ्यात्व अवस्था में, तब जाके सम्यक तो हुआ था। ये मान्यता में लेने की बात है। लोगों को ऐसा लगता है देखो ये सबका पुण्य छुड़वा रहे, सब पाप में जाके गिरेंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे यहाँ मान्यता छुड़ा रहे है और आप वो प्रवृत्ति की बात उठा रहे, यानी वो आधा अधूरा सुनता है या जो अपनी मान्यता रखकर सुनता है तो उसका मर्म उसको ख्याल में नहीं आता, यानी सही बात सुनकर भी उसमें से गलत अर्थ निकालता है, ये विरोध में चला जाता है। ये कह रहे अहिया कहे चे के, ये नया पैराग्राफ है ना? हाँ, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। तत्वना स्वरूप ने जे प्रकट करे छे, तत्वना स्वरूप है वस्तु स्वरूप कौन के एवी प्रवचन सार नी आ टीका करवामा आवे छे। एम श्री अमृतचंद्राचार्य प्रतिज्ञा करी, तेओ तो मुनि छे, महाशुद्धोपयोग ने प्राप्त छे, भले अत्यारे विकल्प आयो छे, क्यों? क्योंकि अभी टीका करने का विकल्प है ना उनके, पण पछी तेने तोड़ीने शुद्धोपयोग मां जाय छे, ए वात आगळ कहेशे। ए पंच महावृत्तादिनो विकल्प आवे छे, पण ते बधो दोष छे, जे राग छे ते हेय छे, है ना? भले वो शुभ राग है पण वो कैसा है, वो मान्यता में कैसा है, वो हेय है। जब हेय गेय उपादे कहते हैं तो श्रद्धान की अपेक्षा लेना है। वैसे ज्ञान के लिए तो सारे ज्ञान के गेय है, ज्ञान के तो सब कुछ गए हैं, स्व भी है, पर भी है, राग भी है, पर पदार्थ भी है, ज्ञान के लिए तो सब कुछ गए है। परंतु ये सात तत्वों में हम उसकी किस प्रकार से मान रहे, उनको रखने लायक मान रहे कि छोड़ने लायक? हो रहे हैं पुण्य, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, शुभ भाव है, परंतु मान्यता कैसे होनी चाहिए? अरे ये भी छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होने लायक है, यह है सही मान्यता। तो कहते कि
जब ऐसा उपदेश दिया जाता है ये शुभ राग भी है, ये है, तो हमको नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करें? ऐसा लोगों का सवाल खड़ा होता है, हम क्या करें? पहले में पहले ये नक्की करके शुभ भाव भी तू कर नहीं सकता, शुभ भाव करना यह तेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव रूप प्रणमन करना ये सही बात है। ज्ञान करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा कभी नहीं होता है, ज्ञान तो होते ही रहता है, लेकिन ये विभाव रूप जो राग या द्वेष का परिणाम, पुण्य पाप का परिणाम है, वो पर्याय में जो आता है वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय उस रूप परिणमेगी, वो जीव करता है इसलिए कभी नहीं होता है। क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा ही माना है, हम पूजन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तब हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह आदि का भाव सहज आता है, हम चाहते नहीं है,
आता नहीं है।
हाँ, और
अच्छा अच्छा आप उल्टा सोच रहे हैं।
हाँ, उसे बोलने दो, यानी हम शुभ भाव करना नहीं चाहते लेकिन वो आता है, अशुभ भाव, लेकिन शुभ भाव हम कर सकते हैं, ऐसी जीवों की मान्यता है। वास्तव में तू शुभ भी नहीं करता और अशुभ भी नहीं करता, ये करना तेरा स्वभाव भाव ही नहीं है। अगर स्वभाव भाव होता तो अनादि से अनंत काल तक वह शुभ भाव करना ही पड़े, और हमने ऐसे एक नहीं दो नहीं अनंत जीव देखे हैं कि जो शुभ या अशुभ परिणाम से विरक्त होकर यानी दूर होकर वितराग भाव से परिणमित हुए हैं। ऐसे अनंत सिद्ध तो हमारे ज्ञान में है, लाखों केवली हैं और कितने मुनिराज हैं, यानी ये पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम शुभ भाव तो करे क्या नहीं करे, यानी मैं कर सकता हूं ना, ऐसी ही मान्यता है। यहां तो कहते हैं कि तू कर ही नहीं सकता है, ये बात पहले ध्यान में हो तो फिर बाकी के प्रश्न खड़े नहीं होते। चलो आगे
देखो, नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे, फिर से पढ़ते हैं। तेओ तो मुनि छे, महाशुद्धोपयोग ने प्राप्त छे, भले अत्यारे विकल्प आव्यो छे, पण पछी तेने तोड़ीने शुद्धोपयोग मां जाय छे। यो मुनिराजों को तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों ही होते हैं, तो शुभ छोड़कर इसको तोड़कर कहेंगे तो नियम से वो शुद्धोपयोग में जाएंगे। ए वात आगळ कहेशे, ए पंच महाव्रतादिनो विकल्प आवे छे, पण ते बधो दोष छे, जे राग छे ते हेय छे। एनी बात, वो श्रद्धान में उसको छोड़ने लायक माना है। भले टीका वक्ते विकल्प उठ्यो छे, परंतु ते विकल्प पण हेय छे। आवी वात अज्ञानी ने क्या बेसे, क्योंकि वो तो करने धरने की सोचता है हमेशा, और कहते करने लायक नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं, ये सब सामने से प्रश्न भी पूछेगा। अहीं तो ये टीका करनार कहे छे के विकल्प छे ते हे छे, पण आव्या विना रेतो नथी। कल बात आई थी ना वो क्रम आपतित, ऐसा कुछ बात आई थी। अत्यारे आव्यो छे छता पण हूँ तेनो जाणनार छू, हूँ तो राग नु ज्ञान करनारो छू, पण राग मारो छे के राग थी मने लाभ थाय ए हूँ नथी। क्या कहते हैं, पर्याय में राग है और उसका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञान वह मैं हूँ, वो राग वह मैं नहीं हूँ। अभी बताया था ना, राग मेरा स्वभाव नहीं है, उठ रहा है, मेरी पर्याय में हो रहा है, परंतु मेरा स्वभाव और वो राग ये दोनों भिन्न चीजें हैं। इसलिए कहते उसका बस मेरे ज्ञान का वो गेय है, पर उसके करने लायक है ये मान्यता अगर होगी तो मिथ्या तो हो गया। वो राग भला है ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए, उसका आदर नहीं है। यहाँ लिखा ना, राग मारो छे के राग थी मने लाभ थाय ए हूँ नथी। आ रीते मंगलाचरण करियो, आ रीते मंगलाचरण ने टीका करवानी प्रतिज्ञा करीने भगवान कुंकुंदाचार्य देव विरचित प्रवचन सार ने पहली पांच गाथाओना प्रारंभ में श्री अमृतचंद्राचार्य देव ते गाथाओनी उत्थानिका करे छे। ये गाथा तो पहले लिख चुके, अभी उसकी टीका करने के लिए हम उसकी उत्थानिका ने उसके पहले इंट्रोडक्टरी कुछ बताएंगे। आ टीका करनार महासंत श्री अमृतचंद्राचार्य देव कहे छे के आ गाथा करनार छे कोण, शास्त्र करनार ए छे कोण, के श्री कुंकुंदाचार्य अभी उनका यहाँ वर्णन कर रहे। हवे संसार समुद्र नो किनारो जेमने निकट छे, अरे पण तमे हजार वर्ष पहला थया, अने श्री कुंकुंदाचार्य तो संवत 49 मां थया, अने पछी हजार वर्षे तो श्री अमृतचंद्राचार्य थया, छता तमने आवी खबर पड़ी गई। ख्याल प्रश्न पूछा समझ में आते, क्योंकि वो तो पहले हो गए सन 1949 में, और फिर बाद में हजार वर्ष के बाद अमृतचंद्राचार्य, तो उनको कैसे पता चला कि वो आसन भव्य है, ये पूछ रहे। पर हमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहिए छे ने, जो अमे महाव्रतधारी छे, जेमने संसार समुद्रों किनारों निकट छे, अर्थात एकाद भव करीने जेवो मोक्ष जनारा छे, एम कहे छे। एने अत्यंत नजदीक ऐसा लिया, समझाणो काय, एवा कोई आसन्न भव्य अर्थात जेने हवे मोक्ष थोड़ा काल मा नजीक छे, एवा महात्मा श्रीमत भगवत कुंकुंदाचार्य देव, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए वहां पर, देव के बाद वो ब्रैकेट है ना, उसका कोई वहां कोई जरूरत नहीं है। महात्मा श्रीमत भगवत कुंकुंदाचार्य देव सातिशय विवेक ज्योति, सातिशय ने उत्तम विवेक ज्योति ने वेद ज्ञान ज्योति, जेमने प्रकट थई छे, सातिशय उत्तम विवेक ज्योति जेमने प्रकट थई छे, मुनि अवस्था है ना, इसलिए सातिशय भेद विवेक ज्योति कही, यानी चौथे पांचवे वाले को भी तो भेद ज्ञान तो है ही है, परंतु यहाँ प्रचुरता से है, એમ કહેવાનો આશય પાછો એવો છે કે જે ભેદ જ્ઞાન થયું છે તે હવે પડવાનું નથી. સાતી શૈલી હે ને, અભી કાયમ રહેગા. એક ક્યુંકિ અભી તો ઇસ પંચમ કાલ મેં યહાં સે તો મુક્તિ નહીં, અભી તો સ્વર્ગ મેં ગયે વૈમાનિક મેં, વહાં સે આકર મોક્ષ ચલે જાયેંગે. બાણુ ગાથામાં આવ્યું છે ને કે અમે આગમ કુશળથી અને આત્મજ્ઞાનથી જે દર્શન મોહનો નાશ કર્યો છે અને જે સમ્ય દર્શન ઉત્પન્ન થયું છે તે દર્શન મોહ હવે ફરીને ઉત્પન્ન થાય એ અમને નથી. ઇતની ગેરંટી કે સાથ બતાતે અમે અમે ને અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન પાસે ગયા નથી, છતાં અમે કહીએ છીએ. હા હા, કુનકુંદાચાર્ય તો ભગવાન પાસે ગયા હતા, પણ ટીકા કરનાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય કે જેઓ ભગવાન પાસે ગયા નહોતા તે એમ કહે છે. સમયસારની 38મી ગાથામાં એ આવે છે અને આમાં પ્રવચનસારની 92મી ગાથામાં પણ આવશે. અમને જે મોક્ષ માર્ગ પ્રકટ થયો છે, અંતર આનંદનો નાદ જાગીને જે અમને અનુભવ થયો છે તે હવે પડવાનો નથી. ઇતની દૃઢતાપૂર્વક, ક્યુંકિ ઇતની દૃઢતા હે અંતર મેં. 92મી ગાથામાં છે, જુઓ આ બાજુ છે, આ આત્મા સ્વયં એટલે પોતે ધર્મ થાય તે ખરેખર મનોરથ છે. તેને વિઘ્ન કરનારની તો એક બહિર્મોહદૃષ્ટિ જ છે, અને તે બહિર્મોહદૃષ્ટિ તો આગમ કૌશલ્ય તથા આત્મજ્ઞાન વડે હણાઈ ગઈ હોવાથી, એને જો બહિર્મોહદૃષ્ટિની મિથ્યા તો જો હે વો આગમ કુશલતા સે ઓર આત્મજ્ઞાન કે દ્વારા ઉસકા નાશ કર દિયા હૈ મિથ્યાત્વ કા, હવે મને ફરીને ઉત્પન્ન થવાની નથી. એ તો ઠીક, પણ સમયસારની 38મી ગાથામાં તો એવું કહ્યું છે કે અપ્રતિબુદ્ધ શ્રોતા છે. અપ્રતિબુદ્ધ સમજતે અતિ પ્રતિબુદ્ધ દક્ષાબેન, અપ્રતિબુદ્ધ આપકો પહેલે એક બાર બતાયા થા, યાદ હે? નહીં. હા, અજ્ઞાની મિથ્યા દૃષ્ટિ, અપ્રતિબુદ્ધ. અપ્રતિબુદ્ધ શ્રોતા છે તેને સંત ગુરુ ધર્માત્મા ઉપદેશ આપે છે અને તે સમય દર્શન પામે છે. તો તે એમ કહે છે, પાંચમા આરાનો અપ્રતિબુદ્ધ શ્રોતા હતો, તેને મુનિએ સમજાવ્યો તો એમ કહે છે કે અમને જે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રકટ થયા છે તે પડવાના નથી. શું કહ્યું સમજાણું? એ આ તો 92મી ગાથામાં તો શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય પોતાનું કહે છે, પણ ત્યાં તો 38મી ગાથામાં તો એ લીધું કે પ્રતિબુદ્ધ થયેલો શિષ્ય કહે છે. એને મુનિકે દ્વારા ઉપદેશિત એસા જો શિષ્ય ઉસને સમય દર્શન પ્રકટ કિયા તો વો ડંકે કી ચોટ કહેતે કે હમ અભી ગિરને વાલે નહીં. ત્યાં 38મી ગાથામાં તો એ લીધું કે પ્રતિબુદ્ધ થયેલો શિષ્ય કહે છે, કેમ કે જીવનો અધિકાર પૂરો થાય છે ને, તેમ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ પોતે કહ્યું ને કે અશેષ કર્મનો ભોગ છે, ભોગવવો અવશેષ રે. તેથી દેહ એક ધારીને જાશુ સ્વરૂપ સ્વદેશ રે, એક કોલ કરાર કરે છે, એમાં કાંઈ એક અક્ષર પણ ફરે એવું નથી. वो भी बताते ना, एक देह धारण करके एक स्वर्ग का भोग करके मोक्ष जाने वाले मनुष्य होकर. देखो ये ज्ञान का गेय हो सकता है, इसकी उसमें कोई बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इतनी दृढ़ता अंदर तो उनके ज्ञान में अनुभव में आ जाती है. अरे अन्य लौकिक मृत्यु के बारे में भी कितने, इसके लिए तो समय दर्शन की जरूरत नहीं ना, कितने हमने ऐसे देखे है कि पहले बताते अभी एक महीने की मेरी आयु शेष है, कोई कहते कि बस अभी दो दिन में है, यानी पहले बता देते अभी ये मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, आज सब इधर ही बैठना, आज मेरा अंतिम दिन है. ऐसे हमने स्वयं देखे हैं, यानी इतना तो ज्ञान में ये तो हो सकता है, उसमें कोई चमत्कार है वो बात नहीं है, ज्ञान की विशेषता हो सकती है. यहाँ तो जिसने समय दर्शन प्राप्त किया है और अंदर से ऐसे उनके श्रुति ज्ञान में भी ये बातें हो सकती है. कहीं थोड़ो राग देखाय छे, હજી નાશ થયો નથી. પણ અમે એક ભાવ કરીને આ રાગનો નાશ કરીને સ્વરૂપને પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરશું, શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એમ કહે છે. એમ અહીંયા 38મી ગાથામાં જીવનું પૂરું સ્વરૂપ બતાવીને કહે છે કે જે શ્રોતા અપ્રતિબુદ્ધ હતો અને અજ્ઞાની હતો તેને ગુરુએ સમજાવ્યો. એ ગુરુએ સમજાવ્યો એ પણ વ્યવહાર કથાને, નિમિત્તકા કથાને. હા, હો ગયા. વો કોલ કરાર કરે છે, વો તો બ્રેકેટ કા નહીં પડા થા, કૌન સે કાવ્ય કા, ઇસલિયે ઉન્હોને રેફરન્સ દિયા. વો હા, પાંચમા આરાના સાધુ અને પાંચમા આરાનો શ્રોતા. હા હા, કોઈ કેમ કહે, કહે છે કે પાંચમા આરામાં અત્યારે તો શુભજોગ જ હોય, શુભોપયોગી હોતા હે, શુદ્ધોપયોગ નહીં હોતા. वो हम गए थे ना, वो तो विदेश में गए थे, अमेरिका में एक भाई ने पूछा था कि हमने तो ऐसा सुना कि आप इस काल में आत्मा का कुछ नहीं करते थे शिकागो में, तो क्या कर सकते हैं, क्या करना है, दान करो, किसको, हम है ना यहाँ करे. ऐसे जाने वाले स्कॉलर्स बताते थे उनको, तो उनको उसमें संदेह लगता था, उसमें बात जस्ती नहीं थी. क्योंकि इसीलिए तो दूसरे किसी को उन्होंने प्रश्न किया ना कि हमने तो ऐसा ऐसा सुना है, हमने यहाँ ऐसा कहने वाले हमें मिले थे, तो क्या यह बात बराबर है क्या. अगर उसको बैठती तो वही उस अनुसार करता ना, उसने फिर दूसरे को प्रश्न क्यों किया, यानी वो अंदर से उसको जस्ती नहीं थी बात. तो फिर बता, अरे आत्मा का ही सब कुछ कर सकते, दूसरा तो कुछ कर ही नहीं सकते. और ऐसे उल्टी प्ररूपना हो रही कि तुम आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, बस दान दे दो, शुभ भाव करो, हो जय कल्याण, यानी पूरा का पूरा जैन के नाम पर ही उल्टा उपदेश हो रहा है. यहाँ क्या कहते, देखो, पांचवा आराना साधु ने पांचवा आराना श्रोता, नीचे से तीसरी लाइन, कोई केम कहे कि पांचवा आरामा अत्यारे तो शुभ जोग ज होए, अरे प्रभु प्रभु शू करे छे तू आ, यानी ऐसा क्यों उल्टा प्ररूपना हो रही, उल्टी प्ररूपना. અહીંયા તો શ્રોતાને એવો લીધો છે કે તે એમ કહે છે કે અમને જે દર્શન જ્ઞાન પ્રગટ્યા છે તે હવે પડે નહીં. એને શિષ્ય ભી એસા કહેતા હે, તો ગુરુ કી ક્યા પોઝિશન હોગી, એમ એવા અમને પ્રગટ્યા છે. અમે અપ્રતિહત સમય દૃષ્ટિ છે, અપ્રતિહત કરતે અભી ગિરને વાલે નહીં. હા, 38 ગાથામાં છે, તે શ્રોતાની વાત છે, પણ આ તો 92મી ગાથામાં તો પોતાની વાત છે. હા હા, અભી આને વાલી, હા 38 વાલી હો તો સમય સરકે. હા હા, જે અનાદિનો અપ્રતિબુદ્ધ હતો તેને ગુરુએ વારંવાર સમજાવ્યો એમ છે ને 38 ગાથા. એક એક શબ્દ અલૌકિક છે બાપુ, એ વ્યાખ્યા કાંઈ સામાન્ય નથી. તેમાં કહે છે કે અમે અમારા પરમેશ્વરને ભૂલી ગયા હતા, આવે છે ને એમાં, તે પરમેશ્વરને અમે યાદ કર્યા અને અનુભવમાં આવ્યા, તેથી અમને દર્શન જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા, આત્મા પ્રાપ્ત થયો. હવે અમને વિતરાગના વિરહ છે, પંચમારામાં કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નથી થતી, છતાં કોલ કરાર કરીએ છીએ કે અમે પડવાના નથી, એની ગેરંટી કે સાથ બતાતે. આવું છે, આવી શ્રોતાની વાત છે. ભગવાન આત્મા જ્યાં અંદરથી જાગ્યો અને સમ્યક અનુભવ થયો, એને સમય દર્શન, અંદરથી જાગ્યો કે અર્થ ક્યાં, સમ્યક અનુભવ થયો, તો કહે છે કે તે હવે અમને પડવાનો નથી. અમે ભગવાન પાસે ગયા નથી, પણ આ અંદરના ભગવાન પાસે ગયા છીએ. નિશ્ચય નમસ્કાર આવે ને. હા, વગેરે ઘણી વાતો છે. અહીં તો 92મી ગાથામાં તો આમ આવ્યું ને કે બહિર્મોહ દૃષ્ટિ ફરીને ઉત્પન્ન થવાની નથી, એટલે આ લીધું, 38મી ગાથા લીધી. એને એવું તો રેફરન્સ કહા ક્યાં આતા હૈ, આગે પીછે કે અન્ય ગ્રંથો કે સબ બતા રહે. અભી યહાં કી બાત હૈ, અહીં તો સાતિશય શબ્દ આવ્યો ને, એટલે તે ઉપરથી 92મી ગાથા લીધી. યહાં કોણ સા આયા થા, સાતિશય વિવેક જ્યોતિ જિસકો પ્રગટ હુએ, અભી કી ગાથા કી બાત ચાલ રહી, सातिशय विवेक ज्योति जेमने एटले कुनकुंदाचार्य देव ने प्रकट थई छे एम अमृतचंद्राचार्य देव कहे छे। सातिशय शब्द लगाए। हाँ बापू, आ तो भगवंत स्वरूपनी वात छे भाई। ए द्रव्य पड़े तो द्रव्यनी दृष्टि पड़े। क्या कहा, द्रव्य तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसकी द्रव्य दृष्टि भी नष्ट नहीं होगी। ये कुनकुंदाचार्य की बात। अहीं कहे छे के सातिशय उत्तम विवेक ज्योति जेमने प्रकट थई छे, अर्थात परम भेद विज्ञानो प्रकाश जेमने उत्पन्न थयो छे, अने समस्त एकांतवादरूपी अविद्यानो अभिनिवेश जेमने अस्त थयो छे। एकांतवादरूप अविद्या, अविद्या ने अज्ञान। कैसा अज्ञान? एकांत, एने वस्तु को सर्वथा किसी एक ही, सर्वथा की बात है। नए जो होते वो सापेक्ष होते हैं, यानी अन्य की वहाँ अपेक्षा है, उसकी सत्ता स्वीकार है, कौन करके उसको एक का कथन होता है। परंतु ये सर्वथा कोई एकांतवादी होते हैं, और उसका अभिनिवेश यानी अभिप्राय, अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिप्राय, यानी मिथ्या खोटा अभिप्राय जेमने अस्त थयो छे। दूसरी भाषा में मिथ्या तो जिसका जिनके नाश हो गया है, अस्त हो गया है। अनेकांत प्रकट थता एकांतपनु एटले अज्ञान जेनु नाश थयुं छे। पर्याय न माने अने द्रव्य माने, द्रव्य न माने अने पर्याय माने, व्यवहार माने अने निश्चय न माने, तथा व्यवहारथी पण निश्चय थाय एम माने, ते एकांतवाद छे। क्या क्या बताया? अने पर्याय को मानता ही नहीं, बस द्रव्य ही है, तो मैं तो सर्वथा अविनाशी नित्य हूँ, वेदांती भी कहते हैं, पर्याय की बात ही नहीं करते। तो पर्याय की बात ही नहीं है, आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता है, तो अभी दुखी क्यों हो? तो दुख पर्याय में है, तो ये पर्याय दुख वाली पर्याय नष्ट होकर अतीन्द्रिय सुख वाली पर्याय प्रकट करनी है। मोक्ष की बात तो करते हैं और पर्याय को मानते नहीं है। ऐसे जो एक ही सर्वथा मानते हैं, कोई द्रव्य को मानते नहीं, पर्याय को ही मानते, यानी वो कहते वो तो सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, सब कुछ विनाशिक है, पर पर्याय आई कहाँ से द्रव्य के बिना? तो कहते वो सब एकांतवाद है। समस्त एकांतवादनी अविद्यानो अभिनिवेश, अभिप्राय, अभिनिवेश का अर्थ क्या? अभिप्राय, निश्चय, आग्रह जेमने अस्त थी गयो छे। कोण कहे छे? अमृतचंद्राचार्य। आज थी 1000 वर्ष पहला, अने भगवान पची 1500 वर्षे थेला पंचम आराना साधु, ये कुनकुंदाचार्य के बारे में बता रहे। ये जमका जिनका वो एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश नष्ट हो गया था, ते एम पुकारे छे के अमे एम कहिए छे के कुनकुंदाचार्य देव ने उत्तम विवेक ज्योति प्रकट थई छे, अने समस्त एकांतवादनी अविद्यानो अभिनिवेश जेमने अस्त थयो छे, आत्मी गयो छे, नाश थई गयो छे, एवा पारमेश्वरी अने परमेश्वर जिन भगवाननी अनेकांत विद्याने, अनेकांतवाद विद्याने पामीने, पहला कौन सा था? एकांतवाद रूप अविद्या, अब यहाँ अनेकांतवाद विद्या, उसको प्राप्त होकर अनेकांतनी व्याख्या करी हती के सत्ता ने अभेद थी द्रव्य केवी अने भेद थी गुण केवी, ते अनेकांत एम बने लेवुं। निश्चय थी स्वभाव पमाय छे, पण व्यवहार थी पमातो नथी, एम ते अनेकांत छे। कोई कहते हैं निश्चय से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, उसको अनेकांत नहीं कहेंगे। व्यवहार थी पण पमाय ने निश्चय थी पण पमाय एकांत छे। अहीं कहे छे के पारमेश्वरी एटले परमेश्वर जिन भगवाननी अनेकांतवाद विद्याने पामीने समस्त पक्षनो परिग्रह, पक्ष का परिग्रह ने शत्रु मित्रादिनो समस्त पक्षपात, अर्थात आ मारो भगत छे ने आ मारो वेरी छे ए पण जेमने नथी तेमने आ गाथाओ रची छे एम केवुं छे, माटे ते प्रमाणभूत छे। शत्रु ये इंट्रोडक्शन किसकी की? अभी गाथा तो 5 गाथा अभी आने वाली है, तो ये लिखने वाले कौन है, वो कैसे है, वगैरह वगैरह वो यहाँ बता रहे हैं। हो गया समय? अब यहीं रुकेंगे। क्या कहे? जावाणी